स्टार्ट किए भक्तजनों, भाई बहनों, बच्चों, आज 4 अगस्त 2020 का दिन आपके लिए मंगल में हो और आप सब भगवत चिंतन में अपने मन को लगाए रखें, क्योंकि द मेन एम ऑफ लाइफ इज टू सी द गॉड। बट लेकिन समस्या क्या है, बट वेरी फ्यू पीपल दैट द एम ऑफ लाइफ इज टू सी द गॉड। ये श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि हमारे जीवन का, मानवीय जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, पर माया के कारण बहुत कम मनुष्य ये समझते हैं कि हमने अगर मनुष्य जीवन लिया है तो हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य करनी है। क्यों? अब कारण पूछते हैं, क्यों जानते हैं कम लोग। कहते हैं भगवान मेरी माया दुरत्य है, मम माया दुरत्य, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। जो इस माया को पार कर जाते हैं यही भगवत प्राप्ति कहते हैं। गीता अध्याय 6 का प्रथम श्लोक में बोलती हूँ, अनाशिता कर्म फलम कार्य कर्म करोति याह, सा संन्यासी चा योगी चा नमिल अग्नि चा क्रियाः। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वे संन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं होता। कितनी अच्छी व्याख्या की है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुन अर्जुन, जो फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य कर्म को करता है बस सच्चा सन्यासी है, योगी है। चाहे वो गृहस्थ में रहता, चाहे वो कुटिया में, चाहे शहर में, चाहे वनवास में। सन्यासी अथवा योगी मनुष्य न तो अग्नि से बंधता है न क्रियाओं से ही बंधता है, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा से बंधता है। फलो सत्य ही विद्यते, जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया है वे सच्चा सन्यासी अथवा योगी है। मूल फल की आपत्ति का त्याग करने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सत्ता त्यागी दी गई है जिसने कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया है। श्लोक 2, नियम संन्यास समिति प्राहु योग तम विदवी पांडव न हसन संकल्पो योगी भक्ति कश्चन। हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कभी योगी नहीं हो सकता। अब संकल्पों के विषय में आप जानते ही हैं कि मनुष्य का मन ऐसा है कि वो संकल्प विकल्प में लगा रहता है। मैं ऐसा करूंगा लेकिन कर नहीं पाता, फिर कोई दूसरा विकल्प ले लेता है। लेकिन जो मनुष्य संकल्प विकल्प में फंस जाता है वह योगी नहीं होता है। योगी तो वही बन जाता है जो एक दफा कोई निश्चय कर ले और उसके लिए अपना जीवन लगा दे। संख्य योग और कर्म योग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक है। एक संख्य योग है, एक कर्म योग है। तो कहता चाहे वो योग तो दो है, दोनों किस बात पर स्ट्रेस देते हैं कि मनुष्य को संकल्पों का त्याग करना चाहिए। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपना मन है तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता। देखो, सोचने का विषय है कि संकल्प क्यों नहीं त्याग सकता मनुष्य। आज बोलता है ऐसा करूंगा, कल बोलता वैसा करूंगा। कहता क्योंकि मनुष्य को संसार की सत्ता, संसार में मेरी सत्ता होनी चाहिए, मेरी महत्ता होनी चाहिए और मेरा ये अपनापन है। जब हम इन चीजों को भी त्याग देते हैं तब मनुष्य योगी बन जाता है। संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी आदि कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। श्लोक 3, अवरुक्षम योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढस्य तस्यैव शम कारण उच्यते। जो योग समता में आलोड होना चाहता है। योग का मतलब है समता, सम हो जाना। ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। और उसी योगागुरु मनुष्य का सम शांति प्राप्त में परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। निष्काम भाव से केवल दूसरों के लिए कर्म करने से करने का वेग मिट जाता है। कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अथवा समता में स्थित हो जाता है। कर्म तो करता है लेकिन कर्म करने का जो मैंने किया ये खत्म हो जाता है और हमेशा समता में स्थित हो जाता है। योगारूढ़ होने पर शांति प्राप्त होती है। जब मनुष्य किसी योग से लेकर उसको साध लेता है तो मनुष्य को शांति मिल जाती है और उस शांति का भोगना करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, क्यों वो शांति का अर्थ है शांत होना, चुप होना, कुछ ना करना। जब तक हमारा संबंध करने क्रिया के साथ है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण रूप बंधन है। प्रकृति के साथ संबंध ना करने से मिटेगा कारण की क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में है। चेतन तत्व में न क्रिया है न पदार्थ, इसलिए आत्म प्राप्ति के लिए शम अर्थात कुछ न करना ही कारण है। हाँ, अगर हम इस शांति का प्रयोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूँ, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से भी बड़ी शांति है। इस प्रकार शांति में संतुष्ट होने से शांति का उपभोग हो जाता है। ये भी नहीं कहना कि मैं शांत हो गया, बस ये भी एक अहंकार है। मैं जो आ गई, जहाँ मैं आ गई वहाँ अहंकार आ गया और फिर परमात्मा दूर हो गया। इसलिए शांति में व्यक्तित्व न मिलाए, व्यक्तित्व ऐसा समझे कि शांति स्वतः है। शांति का उपयोग करने से शांति नहीं रहेगी, व्यक्तित्व चंचलता अथवा निंद्रा आ जाएगी। उपभोग न करने से शांति स्वतः रहेगी। क्रिया और विमान के बिना जो स्वतः शांति होती है वह योग है। कारण कि उस शांति का कोई कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है। जहाँ कर्ता अथवा भोक्ता होता है वहाँ भोग होता है। भोग होने पर संसार में स्थिति होती है। श्लोक 4 यथा ही निंद यथेषु न कर्म सुन जते संकल्प सन्यासी योगा दशा योचते। कारण के जिस में न इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में आसक्ति होती है उस मनुष्य संपूर्ण संकल्पों का त्यागी और रोग योगारूढ़ कहा जाता है। संसार क्या है? संसार है पदार्थ और क्रिया। जो हम देख रहे हैं जिस संसार में रहते हैं और जहाँ करना है करने है फिर जो होती है वो संसार है। और मनुष्य कब योगी बनता है? कहते हैं जब वो इस संसार से विरक्त हो जाता है। और लेकिन जब तक वो संसार में पदार्थ में वस्तु में तथा करने में आसक्त रहता है, लिप्त रहता है, तब तक वो योगी नहीं बनता। प्रत्येक पदार्थ का मिलन भी है और वियोग भी है, संयोग भी है और वियोग भी है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ भी है और अंत भी है। प्रत्येक संकल्प उत्पन्न और नष्ट होता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर जीवों का प्रयोग रहता है। संकल्प विकल्प बनते हैं, नष्ट होते हैं, लेकिन मनुष्य की आत्मा, हमारी आत्मा जो है वो हमेशा बनी रहती है। इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति मिटा देता है तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है तब वो योगी हो जाता है। श्लोक 5 उदयदात्मनात्मान बसा दे आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव पुरात्मन। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी, 9वीं 10वीं में, तो एक इडियम हमें पढ़ने को मिलता, पढ़ाया जाता था, मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फेट। और ये श्लोक, ये इडियम मेरे जीवन में आज तक है। और मैं बहुत उनको कहती भी है इस एडियम के बारे में, लेकिन जब मैंने गीता का ये श्लोक पढ़ा तो मैंने कहा देखो, कहते हैं कि भारतीय संस्कृति पुरातन संस्कृति है और इसी में से विदेशी संस्कृतियों ने बहुत कुछ अपनाया है। तो गीता का ये जो श्लोक है पांचवा, इसमें भगवान क्या कहते हैं, मनुष्य अपना उद्धार अपने आप करता, उद्धार मतलब उनकी या भगवान से मिलना जो है या अच्छे होना महान बनना, ये मनुष्य के अपने हाथ में है। वो अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। अगर अपना उद्धार करता है, अपने को बड़ा बनाता है, महान बनाता है, तो वो मित्र है, और जब वो नहीं है काम करता है, गलत रास्ते पे जाता है, तो वो शत्रु बन जाता है। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है। यहाँ गीता में इस विषय को इस प्रकार डिफाइन किया गया है, इसलिए अपने को ही उपदेश दे, अर्थात दूसरे में कमी ना देखकर अपने में ही कमी देखे। जैसे वहाँ शारदा ने कहा, डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, रादर सी योर ओन फॉल्ट, और इसे मिटाने की चेष्टा करें। इतनी अच्छी बात है, कभी दूसरों में कमियां मत देखो, अवगुण मत देखो, और अपने अवगुण देखो, और फिर कोशिश करो कि आज मैंने ये गलत काम किया, कल नहीं करूंगा। भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है, हम भी विद्यमान है, फिर उद्धार में देर क्यों, फिर क्यों नहीं हमें भगवान मिलते हैं। नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। इसे मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है, क्योंकि हमने ही आसक्ति की है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, हम किसी, हमारा मन किसी किसी में फंसा रहता है और हम अपनी ओर, अपने विकास की ओर ध्यान नहीं देते हैं। गुरु संत भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है। अगर मेरी इच्छा है कि मैंने भगवान के दर्शन करने हैं, मैंने मानव जीवन धन्य बनाना है, तो हमारे जो हमें जो गुरु मिलते हैं, तो वो भी हमारे इस कार्य में, इस चिंतन में सहायक सिद्ध होते हैं। अगर हम सोचेंगे नहीं हमें कुछ नहीं बनना, खाना पीना खाना है, तो गुरु भी क्या करेगा। अर्थात हमें गुरु का शब्द विश्वास करना है और उनके सम्मुख रहना है, उनकी शरण लेनी है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। कोई कहते हैं हमें गुरु नहीं मिलते, कोई कहते संत ही नहीं है, कोई कहते भगवान कहाँ है, और अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो इसमें इससे सिद्ध होता है कि हमने ही न गुरु स्वीकार किया न भगवान को, है ना। लेकिन जिन लोगों ने गुरु को, संतों को, भगवान को स्वीकार किया है, उनका अवश्य उद्धार हुआ है। ये हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास हमें बताता है। अब मैं आपको श्री महाराज जी के कुछ भक्तों के जो संस्मरण है, विचार है, भावनाएं हैं, उनको पढ़ के सुनाने जाती हूँ। तो आज मैं लेती हूँ अनिराज, भगवत स्वरूप स्वामी जी, डॉक्टर वी के वाली, चंद्र प्रभा वाली। मैं डॉक्टर वी के वाली और मेरी धर्म पत्नी चंद्र प्रभा शारद वाणी के 50वें अंक के छपने पर श्री माँ जी को और सभी संघ सदस्यों को बधाई देती है। मैंने गवर्नमेंट अस्पताल में दांतों के डॉक्टर के रूप में सेवा शुरू की थी। मेरी पत्नी चंद्र प्रभा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी। श्री माँ जी गीता बहन जी भी वहीं पर 1901 में पढ़ा रही थी। वे चंद्र प्रभा से सीनियर थी। दोनों को आपस में प्रगाढ़ स्नेह था। 1970 में श्री मां जी का तबादला जेवीटी स्कूल रघुनाथपुर में हो गया और 1974 में एक दिन पता चला कि गीता बहन ने नौकरी छोड़ दी है और वैष्णो देवी मंदिर में सेवारत है। उन दिनों वैष्णो मंदिर का स्थान सोना था, मातम की गुफा थी और छोटे छोटे एक दो मंदिर भी बने थे। सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि श्रीमान जी गीता में उस दिव्य वन स्थान में जहाँ केवल पत्थर ही पत्थर चट्टाने तथा झाड़ियाँ भी नहीं है, एक दिन हम बहन जी से मिलने गए। गीता बहन जी के बड़े भाई स्वर्गीय श्री बिहारी लाल सूद जी मेरे बड़े भाई के मित्र थे, इसलिए मैं श्री गीता माँ के परिवार को भली भांति जानता था। हम उनसे मिलने के लिए मंदिर में गए। बहन जी चरणामृत प्रसाद दे रही थी, भगवा साड़ी में वैभात माता लग रही थी। हमें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और छोटे द्वार से भीतर ले गई। वहाँ श्री महाराज जी बैठे थे, उनके दांत में दर्द था। श्रीमान ने हमारी जानकारी देखते हुए कहा, स्वामी जी ये दांतों के डॉक्टर है और ये चंद्र प्रभा मेरी सहेली है, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाती थी। श्री महाराज जी ने हमें अपने पास बिठा लिया और श्रीमान जी ने चाय बनाई। हमने बड़े प्रेम से चाय पी। घर आकर भी हम श्री महाराज जी के प्रेम तथा गीता माँ जी की बहुमुखी सेवा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अब हम हर रविवार मंदिर जाते, जब कभी हमारे रिश्तेदार पंजाब से आते तो हम उन्हें भी अपने साथ मंदिर ले जाते। एक दिन चंद्र प्रभा एक महिला निर्मल दत्ता के साथ मंदिर आई। निर्मल दत्ता चंद्र प्रभा की भाभी है। उन्हें देखते ही श्री माँ ने कहा, ओ निर्मल वाली पहचाना आपने मुझे? इस पर वह चुप सी रह गई। श्री माँ जी ने कहा, हम दोनों ने 4 वर्ष इकट्ठे ही गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई की है, आपका विषय फिलोसफी था और मेरा विषय हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था, इंग्लिश के पीरियड में तो हम मिलती ही थी। ये सुनकर हम सब बहुत प्रसन्न हुए, हैरान भी हुए कि देखो अभी 1956 और 1962 की पढ़ाई की स्मृति भी माँ जी के लिए ताजा ही है। मैंने और मेरी पत्नी चंद्र प्रभा ने दिल से उन्हें अपना गुरु और भगवान मान लिया है। श्री श्री महाराज जी के मम लीन होने के पश्चात चंद्र प्रभा बहुत रोई थी, पर उन्हें सहज ही अनुभूति हुई कि बाबा जी ने कहा था, आप मुझे श्री माँ में ही देखो, हम श्री माँ में ही श्री स्वामी जी के दर्शन करके धन्य धन्य होते हैं। स्वामी जी का आशीर्वाद एक दूसरा प्रसंग है। विनोद सूद और रमटा सूद मनाली से। स्वामी जी का आशीर्वाद। श्री गीता माँ जी तथा शारदा माँ सेवा संघ की शारद वाणी के 50वें अंक की बधाई देते हुए मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही प्रसन्नता का ऐतिहासिक पल है हम सब के लिए। ये पत्रिका निरंतर 12 के हमारा मार्गदर्शन करती रही है, इसके लिए हम श्रीमान जी की प्रेरणा वार्थक प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और साथ ही संपादक महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं। मैं मनोज सूद व मेरी पत्नी अमिता सूद गत वर्षों से माता जी के सानिध्य में महादेवी तीर्थ व शारदा माँ सेवा संघ से जुड़े हुए हैं। मैं मनोज सूद कुल्लू गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज से खालिस में मिलता तो मैं दोस्तों के साथ मंदिर आता, दर्शन करता, भंडारा खाता तथा श्री महाराज जी से मिलता और श्री गीता माँ जी के दर्शन अनायास ही हो जाते थे क्योंकि ये मेरी मासी भी हैं। श्री माँ जी को यौवावस्था में देख कर अनुभूति कि आज भी वैदिक काल की भांति कोई भी दोषी भीड़ वन में तपस्या कर रही है। मैं मन ही मन उनके श्री चरणों में नतमस्तक होता। 1987 में साकार रूप का त्याग करके श्री महाराज का श्री महाराज जी निराकार रूप में या यूं कहें गीता माँ के रूप में हमारा मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। 1990 में मेरा विवाह शिमला में अमिता सूद से हुआ। मैं शिमला से धर्म पत्नी के साथ वापस आया तो हम वैष्णो मंदिर रुके। पिताजी हमें ऊपर लेकर मंदिर में आए। स्वयं से ही वह बड़ी दिन था जिस दिन स्वामी जी ने समाधि ली थी। मंदिर में संतों की भीड़ थी, भंडारा चल रहा था। जैसे ही गुफा के पास पहुँचे तो हमने श्री मां जी के दर्शन किए। हम आशीर्वाद लेकर अपने घर मनाली पहुँचे, तरुपांत कभी कभी मैं अपनी पत्नी अमिता के साथ मंदिर आता। मेरे माता पिता प्राय आते रहते थे। 2002 में जब संस्था रजिस्टर हुई तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में मेरा नाम भी आया और मुझे मंदिर का कार्यभार भी सौंपा गया। 2008 में मंदिर पर इनकम टैक्स आया तो मैं और अमिता श्री माँ जी को लेकर शिमला गए। वहाँ जो लोग हमें मिलवाने वाले थे उन्होंने कहा होगा तो कुछ नहीं परंतु मिलने में कोई हर्ज नहीं और केवल माता जी ही मिलेंगे। जब हम ऑफिस के बाहर पहुँचे तो माता जी ने अमिता को यह इशारा करके कहा कि ये महिला मेरे साथ अंदर जाएगी, उनके पास साहित्य संघ का और ये मुझे देगी। माता जी और अमिता अंदर गए। वहाँ पर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले गंभीर स्वभाव के व्यक्ति बैठे थे। ये स्टेट इनकम टैक्स ऑफिसर अखिलेश रंजन जी थे। माता जी ने अमिता को संघ का साहित्य देने को कहा। अमिता ने संघ की पत्रिका व बाकी पुस्तकें अखिलेश जी को दे दी। उन्होंने श्री माँ को प्रणाम कर आदर पूर्वक बिठाया। श्री माँ जी ने श्री स्वामी महाराज का चित्र निकाल कर कहा ये बाबा जी हैं, इन्होंने स्थान को बनाया है, यहाँ केवल जीव सेवा होती है, अन्न क्षेत्र चलता है, हम इतना पैसा कहाँ से देंगे, हमारे पास इतना धन नहीं है, जो धन आता है हम सेवा में लगा देते हैं। मैंने मंदिर में अलग अलग फंड का निर्माण किया है, फंड्स बनाए हैं, जैसे भंडारा फंड, मैगजीन फंड, बिल्डिंग फंड, इस प्रकार से अलग अलग सब हिसाब रखा जाता है, मंदिर को चलाया जाता है। अखिलेश जी ने माता जी की ओर देखा, अखिलेश जी का रोबदान चेहरा अब एक शांत व्यक्तित्व में बदल गया। वे उठे, उन्होंने अपनी कुर्सी के पीछे शेल्फ से एक पुस्तक निकाली, कुछ पढ़ा, फिर बड़ी ही शालीनता से माता जी से बोले माँ टैक्स माफ कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात फिर कुछ लोगों ने अपील की, फिर इसी सिलसिले में कमाल जी के साथ में चंडीगढ़ गया। वहाँ मिस्टर पुरु जज थे, हम पंजाब में किसी को नहीं जानते थे, इधर उधर घूम रहे थे। श्री माँ जी को फोन किया कि अब क्या करें, तो श्री माँ जी ने कहा कि पंचकुला सेक्टर 6 में उर्मी लुथर के पास जाओ। हमने वैसा ही किया। सायंकाल हम मिस्टर लूथर के घर गए, उन्होंने सारी बात पूछी और अपने सीनियर को बुलाकर कहा कि मनोज जी और कमाल जी को मिस्टर पुरु से मिला दो। सीए ने कहा ठीक है, ये मेरे मित्र हैं, महाराज जी का असीम कृपा से टैक्स की अपील खारिज हो गई। इस तरह से फिर जब मंदिर पर और कई किस्म के पहाड़ गिरे, पहाड़ मतलब तकलीफें आई, डिफिकल्टीज आई, गवर्नमेंट की तरफ से आई, सीए नाराज हो गया। मैं एक बार नहीं कई बार श्रीमान जी को लेकर के गया। एक बार मैं हाई कोर्ट शिमला श्रीमान जी को लेकर गया क्योंकि उस वक्त हमारी पहली पेशी थी, किसी ने शिकायत की थी कि मंदिर नजायज जगह पे बना है, तो माता जी भी साथ गई। तो मैं जब माँ जी को लेकर कोर्ट में गया तो हम सबसे पिछली लाइन में बैठ गए, तो सामने से दो वकील आए, सॉरी दो जज आए और बैठ गए। जब दोनों जज बैठ गए तो माता जी उनकी ओर देख रही थी, वो दोनों जज माँ जी की ओर देख रहे थे। माँ जी कहती है कि उनमें से एक जज को मैं पहले से ही जानती थी, वो जज थे मिस्टर कड़ोर, जो मंदिर में आकर मेरे पास बैठे थे और चाय अथवा जलपान करके गए थे। और दूसरे जज मिस्टर गुप्ता थे और वो कुछ क्षण मेरी ओर देखते और फिर माँ भी उनकी ओर देखती, मतलब मैं भी उनकी ओर देखती। इसमें एक पेशी हुई जिसमें कोई हाजिर नहीं हुआ। फिर दूसरी पेशी थी माँ वैष्णो देवी की, तो एक व्यक्ति ने उठकर कहा वकील साहब नहीं आए हैं। तो उन्होंने माँ जी की ओर देखते हुए कहा कि कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है वैष्णो देवी वाली, आगे डेट डाल दो। इस तरह से मैंने उसमें अपनी आंखों से देखा मनोज और अमिता नहीं मतलब मैंने और अमिता ने देखा कि इस प्रकार दोनों जज श्रीमान जी को देखकर ये कहने पे मजबूर हो गए कि कोई बात नहीं पेशी आगे पेशी की डेट आगे डाल देते हैं। श्री महाराज की इस प्रकार की असीम कृपा एक बार नहीं उसके बाद भी कई बार मंदिर के ऊपर कई प्रकार की सरकारी कठिनाइयां वीरभद्र सीएम हिमाचल के जब उनको मंदिर के विषय में किसी ने शिकायत की तो वो गुस्से में लाल पीले हो गए और उन्होंने कह दिया कि मंदिर को तोड़ दिया जाए। तो उसमें भी हम कुछ लोग इकट्ठे होकर के शिमला गए थे पर बात नहीं बनी। फिर मैं मां जी को लेकर फिर शिमला गया था लेकिन उस दिन देवभद्र जी हमें नहीं मिले थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें आगे निकलता गया और मंदिर के कार्य बनते गए। फिर एक ऐसा टाइम आया कि जब 1916 में मंदिर की बिजली काट दी गई और माँ जी उस वक्त सिंगापुर में थी। जब हम शिमला की ओर जा रहे थे तो कुमार जी ने फोन किया मिस्टर अरोड़ा पायलट को जी को कि जब माता जी आपके घर आएंगे तो आपने उनको बता देना। तो माता जी जब सिंगापुर से वापस दिल्ली आई तो अनिल अरोड़ा ने माता जी को बताया कि ऐसे फोन आया था। माता जी ने फोन किया मैंने फोन उठाया और सुना तो मैंने बता दिया माता जी को कि बात ऐसी है आप चिंता मत करो मंदिर की बिजली काट दी गई है लेकिन मैं अभी शिमला से आऊंगा फिर आपको कुल्लू ले जाऊंगा। आप अब यहाँ से जब चंडीगढ़ जाओगी तो 2-4 दिन आपको चंडीगढ़ रहना पड़ेगा। तो इस तरह से बातचीत करके जब मैं वापस चंडीगढ़ आया तो माता जी को लेकर शिमला गया क्योंकि पता चला था कि वीरभद्र से मिलकर शायद बिजली लग जाएगी। तो माँ को लेकर हम शिमला पहुंचा वहाँ पर अमिता पहले ही थी और फिर हम रात्रि वहाँ मैं अपनी बहन रजनी सूद अश्विनी सूद जी के घर माँ जी को ले गया। रात हम वहाँ ठहरे दूसरा दिन हम सचिवालय में गए सेक्ट्रेट में गए सारा दिन सेक्ट्रेट में ऊपर से नीचे घूमते गए पर कहीं सीएम कोई कहता कि सीएम अभी आएगा कोई कहता थोड़ी देर में आएगा। बहुत से लोग बैठे हुए हैं और बहुत सी बातें हो रही हैं लेकिन सीएम नहीं मिले। और फिर किसी का फोन आया कि मिला तो देते आपको पर आप कुछ पैसा लाए हैं। तो माँ जी ने कहा नहीं हम पैसा नहीं लाए हैं अगर पैसा चाहिए तो आप कुल्लू आइए और वहाँ हम आपको चेक दे देंगे। इस प्रकार बहुत सी बातें करते हुए हम हमारे प्रथम फेल ही होते गए और हम कुल्लू वापस आ गए। माँ जी जब मंदिर में अंधेरा ही अंधेरा देखा तो विवेक जी ने कहा कि हमने आपका प्रबंध महान पूर्णा के पास मेरे घर में रख दिया गया है। तो माँ जी को हम यहाँ अन्नपूर्णा के पास विवेक के घर में ले आए। माँ जी यहाँ रहने लगी पर बिजली का सवाल था बिजली तो लगानी ही लगानी थी अब बिजली कैसे लगे। ये एक दिन नेताजी भरमौरी नेता जो वन विभाग के नेता थे वो सर्किट हाउस धानपुर में आए थे तो वहाँ पर माता जी उनसे मिलने गई। हम कमेटी मेंबर्स भी गए लेकिन नेता तो नेता की बात ही कर रहे थे पर माँ जी ने कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्यों आपने हनन किया है। हम भारतीय नागरिक हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार मिलना ही अवश्य है और ये बिजली पानी तो हमारा मौलिक अधिकार है। तो नेता भरमौरी जी सुनते रहे बहुत सी बातें सुनते गए बाद में उनको लगा कि माँ एक असाधारण लीला है। और जब उनको मौर्य जी को बाहर जाना था तो सब उठे, उन्होंने माँ जी को बाहर तक छोड़ा और माँ जी की गद्दी को माँ जी की गद्दी में बैठाकर उनके चरण छुए। तत्पश्चात हम आ गए वापिस। अब भी काम नहीं बना बिजली का, तो बोला चलो अब भाजपा गवर्नमेंट आएगी तो अब चलो बिजली लग जाएगी। अब भाजपा गवर्नमेंट आ गई, ये हमारे लोकल नेता गोविंद जी के पास मैं माँ जी को लेके गया। हमारे और भी मेंबर थे, गोविंद जी ने कहा कोई नहीं, हम अवश्य इस विषय में सोचेंगे। फिर दूसरी बार हिमाचल के सीएम जयराम जी जब बने तो और कुल्लू आए तो मैं फिर माता जी को लेकर और दूसरे सदस्यों को लेकर हम जयराम जी के पास गए। तो उन्होंने भी माँ जी की ओर देखा और कहा कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन बिजली बनी बनती नहीं लगती नहीं, बिजली के विषय में कोई सोचता ही नहीं है। एक गवर्नमेंट ने बिजली काटी और दूसरी गवर्नमेंट को बिजली लगाने का कोई ख्याल ही नहीं है। ये सोच के मैं बड़ा परेशान था। कई बार मैं किसी ऑफिस में जाता, कभी किसी, कई बार गोविंद जी से मिलने जाता। इस प्रकार फिर ओस में हमारा व्यतीत होने लगा। अंत में एक दिन माँ जी का फोन आया कि मनोज, मेरी सहेली जो कॉलेज की सहेली में लुथर है, उसका फोन आया है कि हिमाचल में जो अब जज बनकर आ रहे हैं सूर्यकांत जी, वो चंडीगढ़ में यहाँ जज थे और वो चंडीगढ़ से शिमला जा रहे हैं। तो मैंने उनको कह दिया है, मतलब ईमेल करती है कि मैंने उनको कह दिया है कि वैष्णो देवी मंदिर की बिजली अवश्य लगानी है, वहाँ की जो अध्यक्ष गीता माँ है वो मेरी कॉलेज की सहेली है और मेरी लड़की भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वकील है। उसने भी उनको अलग से कह दिया था कोर्ट में ही कि अब आप शिमला जा रहे हैं तो वैष्णो देवी मंदिर की बिजली का अवश्य प्रबंध करना, लगा देना। तो मैंने कहा अच्छा। फिर माता जी ने उर्मिल का फोन सुनकर मुझे जब फोन किया तो मैंने कहा कि ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और उन्हीं दिनों पर हमने एक संघ की ओर से एक मुकदमा चलाया था गवर्नमेंट पर और कुछ ही दिनों में मंदिर की बिजली को फिर से लगा दिया गया। इस प्रकार एक नहीं अनेक कठिनाइयां, हालांकि मैं बहुत इस हिसाब से बहुत छोटा हूँ और इतना मुझे नॉलेज भी नहीं था, पर मंदिर के कार्य के लिए माता जी के साथ जगह जगह जाना हुआ, जगह जगह के मुझे अनुभव हुए, एक्सपीरियंस हुए। मैंने देखा कि संसार क्या है, कैसा है, क्या ये राजनीति है, ये सब अनुभव। और उसके साथ साथ मुझे जो असली अनुभव है अध्यात्म का अनुभव, वो श्री मान जी से मुझे अवश्य मिलता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मनोज सूद अंतर सूद, जय माता दी गीता माँ।